ஆயத் 160. ஏ முஸ்லமானோ, தேக்கோ, அகர் அல்லாஹ் தும்ஹாரி மதத் கரேகா தோ கோய் தும் பர் காலிப் நஹீ ஆ சக்தா. ஔர் இசி தரஹ் வஹீ யஹ்ஸுல்கும் ஃபமன் ஸல்லஸீ யன்ஸுருக்கும் மின் பாதிஹி. ஔர் அகர் வோ தும்கோ சோட் தே தோ தும்ஹாரி மதத் ஃபிர் கௌன் கரேகா இஸ்கே பாத். லிஹாஸா க்யா கரோ. வஅலா அல்லாஹி ஃபல் யதவக்கலில் முஃமினூன். ஔர் அல்லாஹி பர் தவக்குல் கர்னா சாஹியே ஈமான் வாலோ கோ. یہ آیت بندہ مومن کا عقیدہ ہے جس کو یقین ہو جائے گا اس بات پہ کہ جب اصل مدد اللہ کی طرف سے ہے تو وہ کبھی بھی کسی دوسرے کی طرف نظریں نہیں لگائے گا. آج بھی آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے پاس سارے اسباب موجود ہونے کے باوجود آج کیوں اس طرح مدد نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ابھی اللہ نے نہیں چاہا. اور اللہ نے کیوں نہیں چاہا؟ کیونکہ ہم نے نہیں چاہا. اللہ اور بندے کی چاہت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیجیے کہ جب آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو دوسرا قدم اس کے پیچھے آتا ہے. اگر ایک قدم نہیں اٹھائیں گے تو دوسرا نہیں اٹھے گا. بندہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں دل کی گہرائی سے سنسیئر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام کروانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں. اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ بندے کو پھر کیوں چھوڑتا ہے؟ تو اس کی بد اخلاقیوں کی وجہ سے، خیانتیں، بد دیانتیاں، بد اخلاقیاں، ناشکریاں. اللہ کی مدد کب آتی ہے اور کس گروپ پہ آتی ہے؟ چار کام ایسے ملتے ہیں ہمیں کہ جو اگر امت مسلمہ میں آ جائیں یا جس دور کے لوگوں میں ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی. پہلی چیز رسول کی اطاعت، اطیع اللہ و اطیع الرسول. یعنی لوگ جب تک سنت سے رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ان تک آتی ہے. دوسرا اصول کیا ہے؟ کہ کافروں سے دلی دوستی نہ ہو، بتانہ اور ولایت کا درجہ نہ ہو. یعنی مسلمان جب کافروں سے مرعوب نہیں ہوتے تو اللہ کی مدد آتی ہے. تیسرا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. یہ کام لوگ کرتے رہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے. اور چوتھا آپس میں اتحاد اور اتفاق. اب آج میں اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں، اگر ان چار میں سے ایک چیز بھی رک جائے، ایک چیز بھی چلی جائے تو اللہ کی مدد چلی جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ 70 لوگ مارے گئے اور اس کی وجہ سے خطرہ کیا تھا کہ جو لوگ اس کا سبب بنے ان کے بارے میں لوگ غلط باتیں کر سکتے تھے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں فیصلہ کر دیا کہ تم نے تو صرف جگہ چھوڑی تھی، میں نے شکست کر دی. اصل میں اگر آپ ابھی تک جتنی تکرار سے یہ بات ہو رہی ہے، کبھی شکست کبھی فتح، اور کیا بات ہو گئی کہ غزوہ احد پہ اتنا تبصرہ، حیرت کی بات ہے. بڑی دلچسپ بات بھی ہے اگر آپ اسے اسلام کا مزاج سمجھیں، کہ سب سے زیادہ قرآن پاک میں ڈیٹیل سے جس جنگ کے حالات ہیں نا، وہ غزوہ احد ہیں. اور یہ واحد جنگ تھی جس میں مسلمان نو کو شکست ہوئی. کیا پتہ چلا؟ ہم زیادہ ذکر کس چیز کا کرتے ہیں جس میں فتح ہوتی ہے؟ گن گاتے ہیں ہم جیتے، یہ ہوا. ہر سال پھر اس دن پہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں. تو اسلام ہمیں فتح اور شکست کے ایٹیکیٹ سکھاتا ہے. بیلنس رکھو. دوسری بات دیکھیے کہ اس شکست کے پیچھے ایک اور بہت بڑی خوبی تھی کہ اگر شکست نہ ہوتی تو مسلمان یہ سوچ لیتے کہ مسلمانوں کو کبھی شکست ہو ہی نہیں سکتی. انویزیبل، یعنی ہم بس افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہمیں شکست ہو. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر کبھی شکست ہو تو شکست کی وجہ سے کام نہیں چھوڑنا، بلکہ اس کے اندر چلتے جاؤ. وہی مضمون جو پیچھے چلتا جا رہا ہے. اب اگلی آیت جو ہے 161، اس کے اندر دو مختلف اینگل ہیں. آیت پڑھ کے انشاءاللہ آپ کی مدد کروں گی. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ. اور کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے. لفظ یغل دیکھ لیجئے، نیا لفظ ہے آپ کے لیے. غین لام لام، غلّ یغلّ غلولاً. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے خیانت کرنا، مال غنیمت میں سے کسی چیز کا چوری کر لینا. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کے اوپر غین کی پیش کی بجائے زیر کر دیں، جیسے غلہ یا غلو غلول تھا نا، غل غین کی پیش یا زبر، اسی طرح اس کو اگر آپ غل کہہ دیں، غین کے نیچے زیر کر دیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دل میں کینہ رکھنا، اینے مٹھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، غل غل، کیونکہ وہ دل کی خیانت ہوتی ہے. اس آیت کے بارے میں دو مختلف باتیں آتی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ غزوہ احد کے تناظر میں ہی نازل ہوئی، तो सेंस क्या बनती थी कि कुछ सहाबा के दिल में ये ख्याल आ गया, बल्कि उनका गुमान था कि अल्लाह के नबी ने दिल से उन लोगों को माफ़ नहीं किया जिनकी गलती की वजह से शिकस्त हुई, बस ऊपर ऊपर से कह रहे अच्छा जाओ मैं तुमसे खुश हूँ। तो अल्लाह कहते वमा कान अली नबी ये नहीं यगुल, नबी की ये शान नहीं है। ये जो वमा कान है ना, ये बिल्कुल ऐसी है जिस तरह उर्दू में हम कहते हैं ना किसी को ये लायक नहीं है, यानी ये इट्स नॉट पॉसिबल। नबी के स्टेटस से ये बात घिरी हुई है कि वो दिल में कुछ और रखे और मुंह पे कुछ और रखे। यहाँ साथ ही अमल की बात भी नोट कर लें, बस अब हम लोगों के साथ ऐसा ही गिल रखते हैं, दिल में गिला होता है अभी, मुंह से कहते नहीं जाओ ठीक हूँ मैं खुश हूँ, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, अच्छा जाओ सुलह कर लो, जाओ हाथ मिला लो, शेक हैंड, कोई दिल साफ नहीं किया होता। कर करा के बाद में फिर थोड़े दिन बाद फिर वही इशू खोल के बैठ जाते हैं किसी दूसरे से। किसी को दिल से माफ करने का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है कि बंदे को वो बात फिर कभी याद भी नहीं रहती, जिक्र भी नहीं होता। तो रिश्तेदारियां हो या कोई भी ताल्लुकात हो, जब किसी को माफ करें तो दिल से करें, और कोई आपसे कि मुझे माफ कर दें तो दिल से करें। अच्छा बाज दफा क्या होता है, इसे एक और चीज भी समझ आती है, बाज दफा कोई गलती करता है आपको कहता है सॉरी सॉरी, आप कहते इट्स ओके नो प्रॉब्लम, नहीं आप मुझे बताएं आपने दिल से माफ कर दिया, नहीं आप अब अंदर से नाराज तो नहीं है ना। ये भी बहुत बैड एटीट्यूड होता है। कहने वाले को भी बहुत फेयर बेस पे कह दे माफ कर दिए तो कर दिए। अच्छा बाज दफा हमें किसी की बात बुरी लगती है, फिर कोई कहता है आपको मेरी बात बुरी लगी, नहीं नहीं बुरी तो नहीं लगी, लेकिन लगी होती है। तो ईमान वाले में इतनी जुर्रत होनी चाहिए, हाँ भाई सॉरी बुरी तो लगी है ना, तो आप किसी को बहुत सर पे चढ़ाएं ना बिल्कुल गिराएं, लेकिन तरबियत का बेहतरीन असूल है कि ये गलती तो है। हम जब खामोश रहते हैं और दिल में गिले रखते हैं ना तो वो गिल बन जाता है, जब हम उससे नहीं करेंगे ना तो किसी और से जरूर करेंगे, क्योंकि अब स्टीम को कहीं तो निकल नहीं है ना, प्रेशर कुकर में जब स्टीम बनती है तो जब उसका विसल खोलते हैं तो बाहर जाती है ना। तो बेहतरीन बात क्या होती है, आप किसी एंगल से देखें, माँ है तो बच्चों पे गुस्सा है, बीवी है तो शौहर पे, शौहर तो बीवी, सास है तो बहू, बहू है तो सास, कोई रिश्ता, उस्ताद है या शागिर्द, इसमें तो हर कुछ उड़ता ही नहीं है किसी को। लेकिन आपके दिल में कोई बात है ना, ये नहीं कि बदतमीजी या गुस्ताखी, मौके से हालात से देखते हुए आप उसका जिक्र करते हैं अगले को कि ये चीज मेरा दिल दुखा गई, या मुझे ये बुरा लगा, या मैं ऐसे नहीं सोचती थी, आपको ऐसे लगा, बोल के ना कह सके तो लिख के दे दे, यकीन करें कि आपका भी दिल साफ, और अगर आपने सच्चे दिल से लिखा है तो अगले को जरूर बात समझ आएगी। लेकिन ये दो दोखली बातें, दिल में कुछ ऊपर कुछ, दिल में जल रहे हैं और ऊपर से मुबारक कह रहे हैं कि बहुत खुशी हुई इस रिश्ते की, ये ईमान वाले की शान नहीं है। ठीक है, तो इस ढंग से देखे तो ये गज़वे उहद के नाते से ये आयत नतरी, बस कहते हैं कि ये आयत गज़वे बदर के मौके पर नाजिल हुई थी, क्योंकि पीछे भी आपने देखा कि तबसरे में कुछ आयतें बदर की थी कुछ उहद की, उसके पीछे एक वाक्य आता है, और वो क्या है कि गज़वे बदर का जब माल गनीमत आया तो उसमें से एक चादर मिसिंग थी जो लोगों को नहीं मिली। तो कुछ लोगों के दिल में ये ख्याल आ गया कि अल्लाह के नबी ने ले ली होगी, चलो कोई बात नहीं उन्होंने ले ली है। अल्लाह के नबी तक ये बात पहुंची तो उस पे आपको इंतहाई सदमा हुआ, और आपने कहा कि लोगों मैं अल्लाह के माल में से अपने माल में चीज मिलाऊंगा। ये आयत उसके बारे में उतरी कि अगर गिल देख लेंगे तो दिल का कीना है तो ओहद का मौका है, और अगर गुल या गल लेते हैं तो मुराद ये है कि माले गनीमत की चोरी। लेकिन यहाँ जो बात हमारे लिए वो बड़ी सख्त है कि जिसने कोई इज्तमाई माल में से खयानत की उसका सजा बहुत सख्त है, उसका जिक्र आगे है आयत में, वमन यगलुल याति बिमा गल्ल यौमल कियामती, और जो कि खयानत करेगा तो वो अपनी खयानत की हुई चीज समेत हाजिर होगा क्यामत के दिन। फिर क्या होगा, थुम्म तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युस्लमून, फिर हर जान को पूरा पूरा दे दिया जाएगा जो कुछ इसने कमाया होगा, और उन पर कुछ भी जुल्म ना होगा। हदीस में आता है कि जब क्यामत के दिन लोग आएंगे तो किसी ने अगर किसी की कोई चीज चुराई है, कोई इज्तमाई इनफरादी तौर पे, तो वो चीज एक मुजस्म बन के उसके ऊपर आ जाएगी, मसलन किसी के ऊपर गाय भैंस बकरी ऊंट, और किसी के तो कंधों पे यूं कितारों की कितारे ऊंटों की चढ़ी होंगी। बीमा गल्ला, बिल्कुल इस आयत को मैं पढ़ती हूँ तो मेरे जहन में कुल्ली का तसव्वुर आ जाता है कि दोनों कंधों में ऊपर तक सामान के ढेर हैं। कितना आसान है ऐसे कामों पे कुछ करना, लेकिन कितना मुश्किल है। इसलिए अल्लाह सुबहान तला कहते हैं कि आज अगर किसी की कोई खयानत करते हो तो कल उसको अदा करने के लिए तैयार हो जाओ। थोड़ी सी अगर हम इस पे बात कर लें तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माले गनीमत या मैदान जंग की कैफियत तो अगर आज हमारे साथ ना भी हो, लेकिन आप देखिए कि इज्तमाई माल कहाँ होता है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट का माल, जिसको बैतुल माल कह लें या आज के दौर में कौमी ख़जाना कह लें। जो लोग कौमी ख़जाने को अपनी विरास बना लेते हैं, क़यामत के दिन उनका क्या हाल होगा? बहुत ज़्यादा डरने की बात है। ख़यानत, धोखा देना, नाहक कोई चीज़ लेना, ये सब कुछ इसमें आता है। फिर अगर आप देखिए कि आज के दौर में हम आम लोग इसको किस तरह सोचे, मसलन बाज़ जगह आप देखिए कि आप जाते हैं खाना खाने, वहाँ बहुत कुछ है, चीनी भी रखी हुई है, केचप भी रखी है। केचप भला क्यों रखी है? कि आपने कोई बर्गर लिया तो आप केचप ले लें, और एक बंदा कितनी ले ले, एक दो ले ले, कुछ लोग मुठियाँ भर लेते हैं, पकड़ लो मुफ्त है। होटल में खाना खाने जाएंगे तबाहियाँ डाल के आ जाएंगे, एक की जगह चार चीनी की चमचियाँ पकड़ ली, और क्या कहते नहीं उन्होंने रखी हुई थी, तो उन्होंने इसलिए रखी थी ना कि आप यहाँ इस्तेमाल करें। चाय आपने नहीं ली तो चीनी ले ली, बर्गर लिया साथ चीनी की चार पैकेट उठा लिए, क्या ये गुल नहीं होगा? इज्तमाई माल के बारे में इंसान को बहुत फिक्र की ज़रूरत है। मस्जिदों में गए, टॉयलेट पेपर एक की जगह चार रोल पकड़ लिए, एक टिश्यू की जगह चार टिश्यू पकड़ लिए। इतना कॉमन है आज हमारे कल्चर में कि जिसको कहते हैं माले मुफ्त दिले बेरहम, ऐसा ना करें। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा से, नबी सल्लम ने फरमाया कि देखो ऐसा ना हो कि क़यामत में मैं किसी को इस तरह आता देखूँ कि इसकी गर्दन पर एक ऊँट हो और वो ये ऐलान हो रहा हो किसने माले गनीमत का ऊँट चुराया था, और वो शख्स अगर मुझसे शिफात का तालिब होगा तो मैं इसको साफ जवाब दे दूंगा कि मैंने हुक्म इलाही पहुंचा दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ज़रा सोचिए क्या रुसवाई का आलम होगा, इतना डरने की ज़रूरत है। बस रिवायत में आते कैसे लोग तमन्ना करेंगे कि हमें जहन्नुम में भेज दिया जाए मगर हम इस रुसवाई से बच जाएं। एक होता है कि आम चोरी, किसी का पेन चोरी कर लिया, ये भी चोरी है, लेकिन देखिए जब किसी एक फ़र्द की चीज़ चोरी होती है तो उसको खबर ज़्यादा होती है, फौरन पता चल जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता किसी एक ही चीज़ चोरी की आपने, किसी ने भी की, तो एक उससे क़यामत के दिन आके मांगेगा, लेकिन जो इज्तमाई चोरी करेगा तो कितने दावेदार उस दिन आ जाएंगे। और इज्तमाई कामों में तो पता ही नहीं होता, यानी हमारा दीन जो उस तरह नहीं फैल रहा, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम दीन के माल को अपने माल जितनी अहमियत नहीं देते। अपना माल तो सेंध सेंध के रखते हैं, और जहाँ दीन की चीज़ हो कोई चीज़ लेते हुए नहीं देखते, महंगी ले रहे हैं सस्ती ले रहे हैं, देते हुए नहीं सोचते, और दिल यही चाहता है कि हमें ये चीज़ मुफ्त में मिल जाए। और ख़ास तौर पे जब वो काम करने वाले लोग जिनकी वो जिम्मेदारियाँ, बस आप देखिए हुकूमती इदारे हैं, अब वो सिर्फ अकरबा परवरी और रिश्तेदारों को ही अपने से देते दें ले जाओ। कितना आम है फोटोकॉपी मशीन ऑफिस में मिलती है मर्दों को, उन्होंने रखी हुई है कि आपको कोई काम करना है पेपर कर ले, आप अगर वहां से फोटोकॉपियां कर करके तो लोगों को बांटना शुरू कर दें, बेचना शुरू कर दें। अगर तो किसी को इजाजत है ना तो उसको पता होता है कि मुझे कितनी इजाजत है, लेकिन बाज दफा इजाजत थोड़ी होती है, हम ज्यादा ले लेते हैं। ऑफिस की गाड़ी है, ऑफिस जाइए, ऑफिस से घर आ जाइए, आप उस गाड़ी में सारे शहर में फिरते रहे, और उससे भी बदतरीन बात कोई उस गाड़ी को टैक्सी बना के उसके ऊपर पैसे कमाना शुरू हो जाए, तो ये चीजें बहुत खतरनाक है। देखिए ऐसी चीज़ों में तो बंदे का दिल चाहता है कि कभी किसी बंदे से उसका वास्ता ही ना पड़े, अकेला किसी जंगल में जाके बैठ जाए कि इंसानों के मामलात में मैं ना आ जाऊँ। ग़ज़वे खैबर के दिन एक शख्स का इंतकाल हुआ, लोगों ने कहा अल्लाह के नबी आइए नमाज जनाजा पढ़ाएं, कहा जाओ तुम खुद पढ़ लो अपने साथी की नमाज जनाजा, मैं नहीं पढ़ूंगा। लोगों के रंग फक हो गए कि क्या हुआ, कहा क्यों, कहा कि तुम्हारे साथी ने राह खुदा में खयानत की है। लोगों ने उसके सामान की तलाशी लेनी शुरू कर दी तो यहूदियों के नकली मोती उसके सामान में से मिले जिनकी कीमत सिर्फ 2 दिरहम थी। उसने सुच्चे समझ के छुपा लिए माले गनीमत में, वो नकली थे, सिर्फ इस वजह से अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं नहीं करूँगा। बहुत सोचने की बात है। सही बुखारी की रिवायत भी ऐसी है, करकरा नामी एक खादिम था अल्लाह के नबी का, जब आपके सामने फौत हुआ तो लोगों ने कहा जन्नती को देख लो, खादिम भी था आपका और शहीद हो रहा है, तो आपने कहा नहीं ये दोजख में जाएगा। और बाद में लोगों ने देखा तो उसके सामान में से एक अबा मिली, यानी एक चोगा उसने चुरा लिया था। इसी तरह एक शख्स के बारे में आता है कि उसने माले गनीमत में एक चादर चुराई है जो उसके ऊपर अब आग की बना के उड़ा दी गई है। अगर ये इल्माम कर दिया जाए तो सच बताएं हुकूमती खजाना लूटे कोई? आज वो लोग हमारे बड़े बन जाते हैं जिन बेचारों को शायद कुरान पूरा सही पढ़ना भी आता है कि नहीं आता, आज के दौर में अगर कुरान को आम कर दिया जाए तो हमारे ये टैक्स चोरी होने, और ये कुछ कम हो, आम लोग टैक्स चोरी करते हैं और दूसरे लोग जो हैं वो सारा कुछ ही चोरी कर लेते हैं। तो आज उम्मत को इस तरह से एजुकेट करने की ज़रूरत है कि ऐसी तमाम चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ले। मेरे और आपके लिए तो इसमें यह है कि जब भी दीन के नाम पे कोई माल, कोई पैसा, कोई डोनेशन आए, बस अपनी जान को तो उससे बचा लें। बड़ी खुदा खौफी के साथ आप उस चीज़ को हिसाब करें। ज़ाहिर करना तो इंसानों नहीं होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा हम अपनी अथॉरिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी ने क्या कहना है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, चलो जी हमारे आगे कौन बोलता है। मैं तो अक्सर आप लोगों को भी कहती हूँ कि अगर आप मुझे खाना डाल के देते हैं, जितनी प्लेट दूसरों को देते हैं उतनी मुझे दिया करें। कल मैं नहीं इसकी जिम्मेदार कि लोगों जितने पैसे दूं और आप मुझे इज्जत में खाने ज्यादा देते रहें, मेरे से नहीं ये खाना बर्दाश्त होगा। तो ये वो चीजें हैं जो इंसान को फिर दिन ब दिन अपना मुहासबा करने के लायक करती हैं। आपका और मेरा इस पे काम क्या होना चाहिए? आज अपने घरों में देखें, बच्चे भी बार दफा जॉब करते हैं, शौहर भी करते हैं, बेटियां भी करती हैं, कोई ऐसी चीज तुम्हारे घर में नहीं आती जो कि इजाजत नहीं। पेन लेके आ गए, मैंने एक दफा यहाँ एक पेन देखा तो उस पे किसी बैंक की स्टैम्प थी। मैंने पूछा ये किसका है, तो एक सिस्टर थी आप ही में से, उन्होंने कहा मैंने रखा है। मैंने कहा इसको उठा ले, हम इस पेन को नहीं यूज करेंगे, ये उनको ही दे दे जिनका है, हम नहीं यूज करते। तो बस दफा केयरलेसली ऐसी किसी ने दिया कोई चीज लेके पेन जेब में डाल दी। अपने लिए तो ये अमल रखे कि दिल बड़ा रखे। आपका किसी ने कुछ भी दिया लिया लेना देना, रात सोने से पहले माफ कर दे। उसको पता कि नहीं पता, आप कह दे अल्लाह मैंने माफ कर दिया, मेरे ऊपर ना किसी का हो। लेकिन दूसरों का अगर आपने देना है तो अपने आप को बहुत ज्यादा देखे, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे ही तकवा आता है। और एक जुमला लिख लीजिए कि दिल में जितना तकवा होता है अमल में उतना एहसान होता है। दिल का तकवा आज़ा के एहसान की सूरत में आता है। फिर बंदा किसी चीज़ पे जुल्म नहीं करता, वो पानी भी नहीं फालतू बहाता, वो एक नैपकिन की जगह दो नैपकिन भी नहीं लेते। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो जो बंदा इतने ज्यादा बचते बचाते जिंदगी बसर करेगा तो क्या वो दूसरे शख्स की तरह हो सकता है। अब एक तकाबुल है आयत 162 में, अफमन तबा रिदवान अल्लाह कमम बा अभी सख़त मिन अल्लाह। तो क्या भला वो शख्स जिसने अल्लाह की रजा की पैरवी की इसकी मानिंद हो जाएगा जो अल्लाह के गजब और गुस्से को कमा कर लौटा। देखिए कितनी सख्त आयत है कि एक शख्स अल्लाह का गुस्सा लेके क्यामत के दिन आ रहा है ऐसी खियानतें और ऐसी नाफरमानियां करके, तो बताओ क्या उसका इंजाम और उस शख्स का जो सारी जिंदगी अपने अल्लाह को राजी करने के लिए जिया, क्या उन दोनों का एक इंजाम है? हरगिज नहीं। बमा वाहु जहन्नम, उसका ठिकाना जहन्नम है। वबीसल मसीर, और वो बहुत बुरी जगह है। इसके बरक्स हम दरजात इंदल्लाह, इनकी भी दर्जा बंदियां हैं अल्लाह के यहाँ। किन की? जिस तरह नेक लोगों के लिए जन्नत के दर्जे हैं ना, इसी तरह बद लोगों के जहन्नम में दरके हैं। लिख लीजिए एक लफ्ज होता है दर्जा, आगे आएगा पांचवें पारे की आखिरी आयत में भी इंशाल्लाह बताऊंगी, लेकिन यहां भी नोट करना चाहिए तो कर लें। दर्जा होता है ऊपर चढ़ना, और दरका काफ नीचे हो तो दरका नीचे होता है। जन्नत के दर्जे हैं हम दरजात, और दरजात दरजातुन की जमा है, ठीक है? दुर्राजा सीढ़ी को कहते हैं, लैडर को। और दर का नीचे आना, किसी चीज का ऊपर से नीचे आ जाना होता है इसमें। हम दरजात निंदल्ला, सबके अपने दर्जे हैं, किसी को थोड़ी जहन्नम की हीट दी जाएगी, किसी को ज्यादा दी जाएगी। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह ताला इसको खूब जानता है। पीछे बात हुई कि छोटी छोटी खियानतें पता चल जाएंगी, अब यहां बता दिया कि कहीं ऐसा नहीं है कि बंदों को नहीं पता चला तो अल्लाह को भी नहीं पता चलेगा, बल्कि अल्लाह को पता है। इसके बाद जो आगे आयत आ रही है, ये तीसरी दफा ये आयत हमारे सबक में आ रही है इन चार पारों में। सूरत बकरा के 15वें रुकू में हजरत इब्राहिम और इस्माइल की दुआ में था, रब्बना वबस फीहिम रसूल मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम, आयत 129 थी। फिर 18th रुकू में के आखिर में ये लफ्ज़ आ गए, कमार सलना फीकुम रसूला मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। अब तीसरी दफ़ा यही मज़मून एक और एंगल से देखते हैं, 164। लकत मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, दर हकीकत अल्लाह ने ये बहुत बड़ा एहसान किया अहले ईमान पर। महसूस करें इसके बोझ को। मन का लफ्ज़ है मीम नून नून, बोझ को कहते हैं, पीछे भी आपने पढ़ा बिल मन्नी वल अज़ा, ये जो हमारे 40 किलो के मन को मन कहते हैं, शायद वो भी यही है क्योंकि बहुत बोझल होता है। तो यहाँ एहसान इससे मुराद है। अल्लाह ने नबी को भेजकर मोमिनों पर एहसान किया, कैसे? इस बार सफीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम, जब उसने उठाया उनमें से एक रसूल, उन्हीं में से उठाने से मतलब उनकी कौम में से। अरब थे तो अरबों में था, अजब थे तो अजमों में होता, उनका हम जुबान, उनका कल्चर जानने वाला। और ये एक बहुत बड़ा एहसान होता है अल्लाह ताला का कि किसी को अपने कल्चर का बंदा मिल जाए जो उसको बात सिखाए। आप 10 लेक्चर इंग्लिश के सुन लें, एक्सीलेंट से एक्सीलेंट स्पीकर, लेकिन अगर आपकी मादरी जुबान उर्दू है ना, तो आपको उर्दू में मज़ा आएगा, इंग्लिश में नहीं आएगा। बात तो समझ आ जाती है, बस की स्पीच अच्छी भी होती है, इंजॉय भी बंदा करता है, लेकिन जो उर्दू आपको अट्रैक्ट करेगी वो नहीं करेगी। इसलिए हर जुबान के स्पीकर्स रेडी होने चाहिए, किसी के साथ बात करते वक्त कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। इससे एक साथ ही अमल की बात हम अपने लिए भी लेते हैं कि आप देखिए कि स्टैंडर्ड जो होता है ना इंसान का जीने का, जो जिस जगह रहता है, जिस दौर का है, उसकी तरह के लोगों में जाके बात करेगा ना, तो उसकी बात बड़ी मौसर होगी। बस आप देखिए कि कोई डिफेंस की बहुत ज़्यादा पोश सिस्टर्स हैं, खूब खाती पीते घर की, और बाहर के मुल्कों में उनका आना और जाना। अब उनको टीच करने वाली कोई ऐसी सिस्टर हो जो सारी जिंदगी मदरसे में रही, वहीं पढ़ा, वहीं पढ़ाया, हॉस्टल है, और उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी, वो जितनी भी खूबसूरत बातें कर देंगी ना, लेकिन वो सिस्टर्स उठती भी क्या कहेंगी? बातें तो बड़ी अच्छी हैं, पर इनको क्या पता हमारे क्या मसाइल हैं, हमारी क्या मजबूरियां, हमारे क्या हालात हैं। जबकि अगर उन्हीं के स्टैंडर्ड, उसी डिफेंस में रहने वाली कोई एक सिस्टर पढ़ लिख के अगर वो उनको बात करेंगी ना, जिनका अपना भी बाहर आना जाना लगा रहे और जिसके अपने घर में भी दौलत हो, जब वो वही बात करेंगी ना, तो ये ज्यादा गौर से सुनेंगी कि अच्छा ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। इसके लिए फिर हर जगह दाई दीन तैयार होने चाहिए, अमीरों के, गरीबों के, कच्ची बस्तियों के। इसमें कोई स्टेटस कॉन्शियस नहीं होता, लेकिन फितरी बात है कि बंदा अपने जैसे लोगों में इजी गोइंग होता है, इजी फील करता है, सीधे लोग हैं तो उधर सीधा सीधा बंदा बात करे। अब आप जाके किसी गांव में दर्श देने जाए और आप जाके न्यूटन की मिसालें दे दें, तो उन तक बात नहीं पहुंचेगी ना। तो कम्युनिकेशन गैप बात में नहीं होना चाहिए। और इसको बिल्कुल आप यूं समझ लें, छोटी सी बात है कि जैसे आप देखिए कि जिस्म में ब्लड है और दिल ब्लड को पंप करता है। अब ब्लड पूरे जिस्म में जाना है, दिल से जो पाइप निकलती है वो पूरे जिस्म में तो नहीं पहुंच सकती ना, पहुंचेगी भी कैसे, क्योंकि उसका तो साइज इतना मोटा होता है तकरीबन। अब वो इतनी मोटी पाइप हमारी इस उंगली में तो पूरी नहीं आ सकती, इस नाखून को तो ब्लड नहीं देगी। अल्लाह ताला ने उसका कितना खूबसूरत निज़ाम बनाया, आर्टरीज, और उसके बदन को छोटी छोटी कैपिलरीज में बदल दिया, पतली पतली वेन्स हैं। अगर आप कभी स्किन को देखें तो उसके अंदर दौड़ती हैं, बस आप ये कह लें। उलमाए कराम जो बड़े बड़े दीन के आप कह लीजिए स्टोरेज होते हैं, वो हर जगह नहीं पहुंच सकते। वो पहुंचेंगे भी तो कम्युनिकेशन गैप ही बहुत होगा, उनकी ज़िंदगी का स्टैंडर्ड बहुत डिफरेंट होता है आम लोगों से। तो अल्लाह ताला फिर कहता है कि दीन को हर जगह पहुंचा दो। अब जिस्म के किसी एक हिस्से को खून नहीं पहुंचता ना, तो वो हिस्सा काम नहीं करता, झड़ने लगता है। आज उम्मत के साथ ये हो रहा है, उम्मत की कसरत को इल्म का खून नहीं मिल रहा और वो हिस्से बेकार हो रहे हैं। हमें क्या करना है? अपने इलाके के लिए एक छोटी सी कैपिलरी बन जाइए, सीखिए, इतना अच्छा सीखिए, ट्रेनिंग लें, अकीदे की इस्लाह, अमल की इस्लाह, तज़किया, तरबिया, और अपनी गली मोहल्ले में ही, वहां आपको जहां साइन कर दिया जाए वहां जाके दीन का काम करें। इंशाल्लाह आज के दौर का यही तरीका है। बड़े लोग नहीं पहुंचेंगे, आप पहुंचे, वो पहुंच के वो फायदा ही नहीं लेंगे। और बाज दफा बाज लोग इतने मशहूर होते हैं कि लोगों ने उनके खिलाफ प्रोपेगंडे किए होते हैं, लोग उनकी दर्स ही नहीं सुनने आते। अच्छा जी, ये तो वहाबी होंगे, ये तो आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो आप एक अननोन पर्सन बन के जाके वहां दीन की बात बचा दें तो ये खैर है। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि नबी का उनके बीच में से होना ये एक बहुत बड़ा एहसान था लोगों के ऊपर। आज हम मुसलमानों को इस पर अल्लाह का लाख शुक्र अदा करने की ज़रूरत है, जिन लोगों ने अरबी किताबों के उर्दू में तर्जमे कर दिए, तफसीरें उर्दू में आ गईं, कैसेट्स उर्दू में आ गईं। तो अल्लाह ताला हमें इनसे सारी चीज़ों से फ़ायदा उठाने वाला बना दे। फिर उसके बाद आप देखिए कि नबी के कामों में जो दूसरी चीज़ थी इस वक्त, वो क्या थी? यतलू अलैहिम आयाती ही जो तिलावत करके सुनाता है इनको इसकी आयतों की, वह युज़क्की हिम और इनको पाक करता है, वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा और तालीम देता है इनको किताब और हिकमत की। वही चार काम है ना, तरतीब थोड़ी सी फ़र्क है, कहीं तस्किया पहले है कहीं बाद में। इस पे हमने 151 सूरह बकरा में बड़ी डिटेल से बात की थी, लेकिन आज भी उम्मत के हालात बदलने का यही नुस्खा है। आप कह लें कि एजेंडा है ये आज के मुसलमानों के मसाइल के हल का, ये करो कि इस्लाह के लिए लोगों को उन जैसा बन के उनके बीच में रह के बड़े आसान लफ्जों में उनको दीन की बात बताओ, आपस में हारमनी पैदा करो, गैप्स को ख़त्म करो, असिमिलेट हुए बगैर अपनी आइडेंटिटी कायम रखते हुए उनको अल्लाह की बात पहुंचाओ और उसके बाद लोगों को अल्लाह से जोड़ दो। आपके इर्द गिर्द वालों को कुरान पढ़ना नहीं आता, उनको कुरान पढ़ा दें, समझ नहीं आता समझा दें, उनका तज़किया नहीं हुआ तज़किया करा दें और हिकमत सिखा दें, यही काम है। अल्लाह ताला कहते हैं, वइन कानू मिन क़ब्ल लफी दलालिम मुबीन, इससे पहले वो यकीनन बहुत बड़ी गुमराही में थे। किससे पहले? नबी की आमद से पहले। आप मक्की दौर से पहले जो अल्लाह के नबी की आमद से पहले के अरबों के हालात थे वो पढ़ लीजिए, आपको इस आयत का समझ आएगा कि जहाँ पैदा होने वाले बच्चों का नस्ब तक महफूज नहीं था। इसी तरह अल्लाह ताला ने ये बात बता दी कि तज़किए का अमल शुरू किया था नबी ने और आखिरी दिन तक उम्मत के अंदर ये काम होता रहेगा। अब देखिए, सोच का तज़किया, शिर्क से पाक, कुफर से पाक, घरों का तज़किया, दिलों का तज़किया, आंखों का तज़किया, कानों का तज़किया, गलियों का तज़किया, सफाई सुथराई, गंदगी, तज़किया का लफ्ज़ इतना वाइड स्प्रेडेड है कि आप इसमें पूरे मुल्क को ले सकते हैं। इसकी ज़रूरत है इस वक्त, लोगों को गम लग जाए कि हमारे घर में एक दिरहम भी हराम कमाई का तो नहीं आ रहा, कोई एक टिश्यू पेपर तो कहीं से फालतू उठाकर नहीं आगे। ये बीच में बात क्यों करती? पीछे बात हुई थी ना कि कहीं नबी उनको डांटे ना गलती की वजह से, तो यहाँ नबी की खूबियां लोगों के सामने पेश करके बता दिया कि देखो तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतना प्यारा लीडर मिला कि जो तुम्हारी हर बात के ऊपर गौर व फिक्र करता है और तुम्हारे मामलात में उसका दिल कितना ज्यादा अल्लाह ताला की तरफ से नरम हुआ हुआ। अब दोबारा फिर गज़वे उहद पे तबसरा है, असल में गज़वे उहद, ये बीच में तरबियती नुक्ते आ जाते हैं, कभी नबी की ज़ात की सूरत में और कभी खयानत की बातें, इसलिए आयत 165 और उसकी आयतों के आगे क्या आता है, अवलम असाबत को मुसीबतुन, और क्या जब तुम पर एक मुसीबत आई, कौन सी लिख ली थी? उहद की मुसीबत, 70 लोग मारे गए, कद असब तुम मिसलैहा, तो कोई बात नहीं तुम तो इससे दुगनी उनको पहुंचा चुके हो। इधर क्या इशारा है? बदर के 70 कत्ल हुए और 70 कैदी भी बने, क्या बड़ी बात है, अगर तुम्हारे यहाँ 70 मारे गए तो उनके तो 70 कैद भी हुए थे, लेकिन तुम्हारा हाल क्या, खुल तुमन्ना हाजा, तो तुम कहने लगे ये कहाँ से आ गई, क्या शिकस्त, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये गलत फहमी होने लगती है दीन वालों को कि हम नहीं कभी हार सकते, ये गुनाहगार है यही हारेगा, हालांकि बाज़ दफ़ा दीनदार गलत होता है, गलती उसकी होती है, तो बस लोग ये सोच लेते हैं कि चूंकि नबी हमारे साथ था तो हमें कभी शिकस्त नहीं होगी। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसा नहीं होगा, कुल हुआ मैंने इन दिल्ला, इनको कहो कि ये तो तुम्हारे अपने नफ्सों की शरारत से हुआ, ये तुमने एक बात ना मानी तो उसकी इतनी बड़ी सजा हुई, अमीर के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, खमियाजा सबको भुगतना पड़ा। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शयइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। वही बात जो आयत 152 में पीछे हुई ना कि अल्लाह अपना वादा पूरा कर चुका तुमसे, अब तुम गालिब आए थे लेकिन तुम्हारे अपने करतूत ऐसे थे कि जिसकी वजह से फिर अल्लाह ने एक झटका लगा दिया। यहाँ एक छोटी सी बात लिख लें कि उहद की शिकस्त सजा नहीं थी, तादीब थी, अदब सिखाया गया, तादीब अदब से है, ताजीब अजाब होता है, यानी अल्लाह ने मुसलमानों को सजा नहीं दी बल्कि ट्रेनिंग की कि चलो अगर बाद में कभी तुम्हें हार हुई तो तुम्हें पता चल जाए कि हार को कैसे मैनेज करते हैं, अभी तो बड़े मरहले आने हैं, अभी तो शुरू की बातें हैं, अभी तो बहुत कुछ होगा। तो अल्लाह ताला डिसिप्लिन करने के लिए उम्मत को इस तरह के झटके दे रहे थे। आयत 166, वमा असाबकुम यौमल तकल जमआनि फबिइज़्निल्लाह, और जो भी मुसीबत तुम पर आई है उस दिन जब दोनों लश्कर आपस में भिड़ गए तो वो तो अल्लाह की इज़्ज़त से आई थी। वलियालमुल मोमिनीन, और वो इसलिए थी कि अल्लाह ताला जाहिर कर दे ईमान वालों को, यही बात पीछे गुजर गई ना, कि गज़वे ओहद की शिकस्त क्यों हुई, ताकि अल्लाह ईमान वालों को जाहिर कर दे। और आयत 176, वलियालमल्लज़ीना नाफ़कू, और ताकि इन लोगों को भी जाहिर कर दे जिन्होंने मुनाफ़कत इख्तियार की। ली या अलम, ली देखिए इल्लत का होता है, ली वास्ते, या लमा जान ले, यानी अल्लाह को खुद तो पता था, दूसरों के आगे जाहिर कर दे इस चीज़ को, उनके निफाक को खोल दे। पीछे हम इस पर पहले सबक में बात कर चुके कि अगर अब्दुल्ला बिन उबई यहाँ ना आता तो कभी उसकी पहचान नहीं होनी थी कि उसके दिल में निफाक है, तो अल्लाह ताला उसको खोलना चाहता था, पता लग जाए कि कौन कितने पानी में। वकील लहुम तआलौ क़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि अव इदफ़ऊ, और इन मुनाफिकों से कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में जंग करो, चलो या कम अज कम अपने शहर का दिफा ही कर लो। जब अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 लोग लेकर जा रहा था ना, तो हो सकता है उस वक्त कुछ लोगों ने उससे कहा कि बेवकूफो किधर जा रहे हो, लश्कर तो उधर है, और अगर 1000 में से 300 निकल गए तो बाकी भी कमजोर हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, मैदान जंग में नहीं लड़ सकते तो जाओ मदीना के बाहर खड़े होकर वहां ही जरा थोड़ी सी मदद कर दो। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। क्या कहा? ये जुमला आगे लिख लीजिए मुनाफिकों का है। कालू, बोले, लौ नअलमु किताल लत्तबअनाकुम, उन्होंने कहा अगर हम समझते कि जंग होनी है तो हम जरूर तुम्हारा साथ देते। एक मतलब इसका ये बनता है, यानी बात टाल दी कि ये कोई जंग है, हम तो आज के दौर में इसको जिहाद ही नहीं मानते, ये वाला अंदाज था। कहने लगे ये कोई जंग शंग नहीं है, ये तो मौत के मुंह में जा रहे हैं और ऐसे ही बस आगे जा रहे हैं, दिस एंड दैट, ये कोई जंग नहीं है। मक्का से अल्लाह के नबी के साथ जो लोग आए वो क्यों आए, इनको आना नहीं चाहिए, तो तनकीद करने लग गए। और दूसरा एक और इस जुमले का जरा टोन देखिएगा कि अगर हमें लड़ना आता तो हम लड़ लेते। ये बिल्कुल एक ऐसे स्टाइल है जैसे आम लोगों को आप जिंदगी में बात करता सुने ना, कहें हाँ जी हम तो हैं ही बेवकूफ, हमें तो समझ ही नहीं है। आप बताइए जब लोग ये जुमला बोलते हैं तो क्या बाकी वो खुद को बेवकूफ समझ रहे होते हैं? चिड़ से बोलते हैं ना, चिड़ का जुमला, हाँ जी हमें कहाँ आता लड़ना, लड़ते तो आप हैं, ये मुराद है। तो मुनाफिकों ने अपनी जान बचानी तो थी ना, कुछ भी कह देते। अल्लाह ताला कहते हैं हुम लिल कुफ्री यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिल ईमान, ये लोग उस दिन ईमान की निस्बत कुफर से करीब तर थे। नोट कीजिएगा, ईमान के बावजूद बंदा कुफर के करीब पहुंच जाता है। यकूलूना बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, ये अपने मुंहों से वो बात कह रहे हैं जो इनके दिलों में नहीं है, ऊपर से बातें करते हैं, दिल और जुबान में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, जबकि वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून, अल्लाह ताला इस चीज को खूब जानता है जो कुछ वो छुपा रहे हैं। आखिरी आयत है बिल्कुल वही मजमून जो कि शुरू में था सबक के, आयत 168, अल्लज़ीना क़ालू लिख़्वानिहिम, ये तो वो लोग हैं जो कहते हैं अपने भाइयों से जबकि वक़अदू, खुद तो बैठे रहे, यानी ये वो लोग हैं जो खुद तो बैठे रहे और अपने शहीद होने वाले भाइयों के बारे में कहने लगे, लौ अताऊ नमा कुतिलु, अगर वो भी हमारे साथ होते तो कत्ल ना होते। वही बात जो पीछे हो गई, बात वाज़े है ना कि ये ना जाते ना मरते। कुल फद्रउ अन अन्फुसिकुमुल मौत, तो कह दीजिए नबी कि अपने नफ्स से मौत को हटा लो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, यानी अगर मौत को रोक सकते हो तो रोक लो। तुम्हारा ख्याल है कि ये इसलिए मर गए कि मैदान जंग में गए थे, तो तुम बताओ कि तुम्हारी मौत अगर आई होगी तो क्या उसके लिए मैदान जंग की जरूरत है? नहीं। कहते कि एक शख्स था उसको कश्ती से बहुत डर लगता था, एक मौके पे उसको बैठना पड़ा, मल्लाह कश्ती में बैठा था, ये शख्स बड़ा शोर मचा रहा था, हाय मैं मर गया, हाय मैं डूब गया। कहने लगा ये बताओ कि तुम्हारा बाप क्या करता था? कश्ती वाले ने कहा कि कश्ती चलाता था। कहा फिर उसको मौत कैसे आई? कहने लगा ऐसे एक दिन कश्ती डूबी तो वो भी मर गया। कहते हाय वो मर गया, अच्छा तो तुम्हारा दादा क्या करता था? कहा दादा भी कश्ती चलाता था। कहा वो कैसे मरा? कहा वो भी इस तरह एक तूफान की जद में आके कश्ती में मर गया। कहते तुम्हारा बाप भी कश्ती पे मरा, तुम्हारा दादा भी कश्ती पे मरा, तो तुम्हें कश्ती चलाते हुए डर नहीं लगता, कश्ती पे बैठते हो? कहने का अच्छा चलो मेरी बात छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा बाप क्या करता था? कहा ये वो करता था। कहा उसको मौत कहा? कहा उसको घर में बिस्तर पे आई। कहा अच्छा दादा क्या करता था? ये करता था। कहा उसको मौत कहाँ आई? कहा उसको भी घर में आराम से बिस्तर पे मौत आई। कहा तुम्हें बिस्तर पे जाते हुए डर नहीं लगता? बिस्तर पे तुम्हारा बाप भी मर गया, तुम्हारा दादा भी मर गया। हाँ तो असल बात यह है कि मौत तो आके रहनी है, कोई अल्लाह के रास्ते में निकले ना निकले, मौत तो आके रहेगी। असल बात यह है कि वो मौत आए जिसका जिक्र कल के सबक में हम पढ़ेंगे। इतना खूबसूरत सबक है कल का। मैं कहती हूँ कि हम सब अपने बचे खुचे ईमान को जमा कर लेना, तो मेरा ख्याल है कि सहाबा के एक अदना से अदना दर्जे के ईमान के लेवल पे भी नहीं पहुँचता जो वाकया कल हम पढ़ने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तवाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु ताला खैरि खल्क़िही व अस्हाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।